का तिरह दूर करने के लिए, प्रशमित करने के लिए। किंतु जितने जितने उनको संदेश सुनाते गया है, उनका तिरह और तीव्र होता है। जो जो संदेश निकाले अपने पॉकेट से, अपनी थैली से, उनका वो भाव दूर होता है। जब अंत में नहीं हुई, इस प्रकार से उत्तरोत्तर वर्धमान अश्रुत अदृष्ट पूर्व प्रेम गांधी जी अवलोकन करके उद्धव महाशय मन ही मन में विस्मित हो उठे और सिद्धांत किया, ऐसा गंभीर प्रेम कहीं सुनने और देखने में आज तक हमको नहीं मिला। कभी मैंने न तो सुना और न तो देखने की तो बात दूर है। नंद बाबा का भी प्रेम देखा, किंतु गोपियों के यहाँ गए तो वो सब कुछ भूल गए। बहुत दूर रहकर और केवल भ्रमर और राधिका में जो वार्तालाप हो रही थी, अकेले एक तरफा राधा जी बोल रहे, बस उसी को सुन। कहते हैं कि वो भ्रमर भी कोई दूसरा नहीं था, कौन था? कृष्ण उसको सुनने के लिए खुद ही भ्रमर बन करके आए और सुन रहे हैं। इसलिए उद्धव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अफिक्नसा। अफिक्नसा माने निरंतर लगातार प्रणाम ही प्रणाम कर, एक भूली की वंदना करते चले जा रहे हैं इसी रूप भाव के लिए। इसी श्लोक में पहले मुमुक्षु, मुमुक्षु माने
मुक्ति चाहने वाले,
मुक्ति को चाहने वाले, संसार भय से भी, जैसे 60,000 ऋषि लोग की 88,000 ऋषि लोग वहां नैमिषारण्य में कलयुग के भय से भगे हुए आए। जब भाग करके आ रहे थे तो ब्रह्मा जी से स्तुति की, जो हमारा कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि देखो ये चक्र एक यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी नेमी जहाँ पर गिरेगी उसको नैमिषारण्य समझना, और वहीं पर तुम लोग बैठ करके कथा का सत्र आयोजित करना और भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करना और सुनना। बस कलयुग के लिए भयभीत से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय, और कोई दूसरा जग इत्यादि के नहीं। मुनिषियों ने देखा हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करके और यज्ञ करके उसके धुएं से उनका शरीर काला हो गया था,
अंदर
और अंदर भी काला। अंदर काला किस लिए हुआ? यज्ञ के द्वारा भगवान मिलेंगे तो बुद्धि भी काली हो गई, उससे नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। ये भाव आएगा कहां से? हरि कथा के माध्यम से ये प्रेम होगा, उस प्रेम के द्वारा भगवान मिल सकते। इसलिए बुद्धि भी काली हो गई और शरीर भी काला उनका हो गया। जब वन जंगल सब कुछ काला हो गया उस धुएं से, तब उन्होंने कथा आरंभ की। तब सुत गोस्वामी लोमहर्षण ने उनको समस्त पुराणों का पाठ किया और सुना। अंत में तभी तृप्ति नहीं हुई तो बलदेव प्रभु जी ने आकर किसी दोष में उसके उसका गला काट दिया, क्योंकि उनका सम्मान नहीं किया गया, और उसके बदले में उसके उग्र सवार सुत को बैठा दिया। और तब उन्होंने भागवत वहां पर सुनाया। तो यह है मुमुक्षु, मुक्त। जो लोग मुक्त हो गए हैं, सनक सनंदन सनातन ये सब मुक्त हैं, नारद जी मुक्त हैं, और भक्तों से भी महान महात्मा ये गोपियों का है, ये भक्त में नहीं है। साधारण रूप में भक्ति की 5 सीमा बतलाई गई, ज्ञाननिष्ठ भक्त, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त,
प्रेम पर
प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त। यहाँ तब तो भक्त उद्धव जी प्रेमातुर में आएंगे, ज्ञानी भक्त में सनक सनंदन सनातन आएंगे, शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज आएंगे, प्रेमी भक्त में हनुमान आएंगे, और
प्रेम
पर में
पांडव
लोग आएंगे, और उद्धव जी आएंगे प्रेमातुर में, प्रेम में आतुर हो जाते हैं। गोपियां इसमें कहाँ आई? गोपियां इन सबके वंदनीय हैं, भाव ऊपर वो भक्तों की कोटि में नहीं, इसलिए कह रहे हैं एता, ये जो है इन तीनों से ऊपर वंदनीय, ये सभी लोग आकांक्षा रहते हैं कि गोपियों जैसी भावना हमारे अंदर में आए, किंतु होगा नहीं। कब होगा? यदि उनकी कृपा उनके ऊपर में होगी। एता नंद ब्रज स्थित महालक्ष्मी स्वरूपा गोपियां पृथ्वी में सफल जन्मा, इन्हीं का जन्म लेना सफल है। क्यों? वो क्या श्लोक है? उन्हीं का नयन होना यथार्थ सार्थक है, जिन्होंने अक्षमतां फलमिदं न परमविदा, किनका जन्म लेना सार्थक है? आंखें भगवान में आंखें दे वो अच्छा है, किंतु यदि आंखें दें तो सार्थक वही है। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, बलदेव जी आगे जा रहे हैं, उनके पीछे कृष्ण है। कृष्ण बंसी बजाते हुए मंद मुस्कान भरी नेत्रों से, करुणापूर्वक दृष्टि से, किसी की तरफ में ललचाई हुई दृष्टि से देख लिया, और उधर बंसी भी बज रही है, स्मित हास्य भी है, ऐसे मुख का दर्शन करना ही ज्ञान की सार्थकता है। ऐसे गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़वा स्वाभाविक वो भाव है। मूल में भूवी जो शब्द है, पृथ्वी इत्यादि, अन्यत्र स्वर्ग या भोगों की प्रचुरता है, और बैकुंठ से भी ले लो, एक भूमि का बैकुंठ इत्यादि सब जगहों में इन्हीं का जन्म एकमात्र सार्थक है गोपियों का। जिसका स्वरूप है वही पाएगा, सब लोग इसको नहीं पाएंगे। जिसका ये स्वरूप में ऐसी भक्ति होगी वही उसको सहज रूप में मिल जाएगी। इसीलिए कार्य हम लोगों को आज तक नहीं मिला है। इसका कुछ रहस्य ये कारण स्वरूप सुनो, वस्तुतः वेद का भी चरम प्रतिपाद्य विषय यह रूप भाव ही है। भागवत में तो है ही है, भागवत वेदों का सार, इसलिए भागवत का भी चरम प्रतिपाद्य विषय ऐसा ही रूढ़ भाव है जो गोपियों में था, इसलिए वो वेद का वेदई
उपदेश सर्वम अहमेव वेद वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
ये प्रेम ही वेद का परम गोपनीय चीज है, किंतु सब लोग इस चीज को समझ नहीं सकेंगे। ये वेदों में यही प्रतिपाद्य विषय है, यह ऐसा प्रेम। किंतु गोपियों के उस भाव, गोपियों में ऐसा यह भाव स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त होता है। इसलिए गोपियों के कंठ में यह वेद और हृदय में उनके कंठ में जो कुछ बोलती है ना, वो ब्रह्म की चरम बात है। जैसे कृष्ण को जार कहा, कपट धूर्त इत्यादि कहा, गोपियों का मुख से जो निकला वो उनके कंठ में और हृदय में उनका जो भाव है, यही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। अतः तहत वेद अध्ययन इत्यादि की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रेम यदि किसी के हृदय में हो जाए तो क्या जरूरत है वेद पढ़ने की? कोई जरूरत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, बस कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, और रसिक भक्तों का, तात्विक वैष्णवों का संग करो, बस यही करने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। री मा पठ री क, मा पठ जजुर, जजुर वेद और साम वेद, ऋग्व वेद, अथर्व वेद का पाठ मत करो, वो कृष्ण करने से ही सब तुम्हारा वेद पाठ हो गया, कुछ पाठ करने की जरूरत नहीं। मन लिया कि श्रीमद् भागवत कोई पाठ कर रहा, और उसमें स्वाभाविक ही गोपी गणों के अनुगत में भजन करने की लालसा जग गई, तो वो भागवत पाठ हो गया कि नहीं? उसके श्लोक पढ़ने से होंगे, वो भाव यदि आ गया तो यही वेद का प्रतिपाद्य, श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य हो गया, उसका सब कुछ पढ़ना हो गया। गोपियां भागवत पढ़ी थी, आखिर भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही गोपियों के भाव में सब इस रूप में सुन। इसलिए प्रेम ऐसा जो है उत्तमा भक्ति, यही वेद का प्रतिपाद्य विषय है। यह यदि हो जाए तो और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ये कैसे होगा? वैष्णव की सेवा अनुगत्य भावना से होगा और अपने प्रयास से भाई नहीं होगा। यहां पर किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, यहां पर ब्रह्म जन्म कहते हैं क्या? यहां पर ब्रह्म होता है वेद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, उसमें जो निष्णात है ऐसा जन्म लेकर के हम क्या करेंगे? कोई भी हमको जरूरत नहीं है, बस हमको न धर्मं न धर्मं सुत गुण निरुक्तं करु प्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यां, बस हम तो राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा ब्रज में करेंगे। इसलिए वेदाध्ययन इत्यादि क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अथवा ब्रह्म कहने से आत्मतत्व, आत्मतत्व को जान करके बहुत से लोग तो जानते हैं आत्मतत्व को, श्रेयस्तिम भक्ति मुदिश्यते विभो क्लेशयन्ति केवल जीव बुध लब्धे तेषाम असौ क्लेशलेव नन्न तथा स्थूल तुषावधार। आत्मतत्व को जान करके क्या होगा? कोई विशेष लाभ नहीं। जो लोग अपने अपने कोटि कोटि जन्मों में बड़े कष्ट स्वीकार करके आत्मतत्व को जानना चाहते हैं वो वंचित हो जाते हैं। कैसे? इसलिए कि मान लिया कि घोर अंधकार रात्रि हो, खूब अच्छे तरह से समझे इसको, घोर अंधकार रात्रि, रात्रि में हम अपने हाथ से इसको देख करके समझ सकते हैं कि नहीं, जो मैं हूं, हमारा हाथ है, हमारा ये हाथ है, हमारी ये नाक है, ये हमारा पैर है ना, ये हम समझ जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मबोध या आत्म तत्व को जानना, जान लिया, किंतु उसका रंग काला है कि सफेद है ये कैसे समझेंगे? उसमें कैसी बुद्धि है, क्या है नहीं है, ये कैसे समझेंगे? ये तो लाइट के मार्फत से ये सब जानना पड़ेगा। यदि सूर्य उदित हो जाए तो हम देखेंगे ये हम हैं, अब टटोलने की जरूरत नहीं है, हम काले हैं कि गोरे हैं ये भी मालूम है, कैसा व्यक्ति है ये सब मालूम हो जाएगा। और सूर्य को भी देखेंगे और विश्व के सब चीजों को देखेंगे, यह है भगवत तत्व का ज्ञान। और जीवात्मा तत्व का ज्ञान है जो मैं हूं, आंख बंद करके भी देख रहा हूं जो मैं हूं। इसलिए आत्म तत्व का जो चेष्टा करते हैं जानने के लिए उनको कुछ हाथ नहीं लगता, और जो केवल भगवत तत्व जानने के लिए चेष्टा करते हैं कृष्ण तत्व और सब जो राधा तत्व इत्यादि परिकर तत्व, वो अपने को भी जान लेते हैं अनायास, कृष्ण को भी जान लेते हैं, प्रेम को भी जान लेते हैं, सब कुछ को जान लेते हैं। इसलिए ब्रह्म तत्व की हमको क्या जरूरत है? इसलिए किम ब्रह्म जन्म भी, हमको वैसे ब्रह्म तत्व को जानने में अपने जन्म को बेखा गंवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये भाव। अथवा ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण का जन्म मैंने वेद पढ़ता है इसलिए उसको भी जरूरत नहीं है। क्यों? अनंत कथा रसस्य, अनंत कौन है? रास लीला करने वाले को अनंत लील कहते हैं, इसमें सब कुछ लीलाएं आ जाती हैं। वो अनंत की जो लीला है कौन सी? कथा रसस्य, रस की कथा है। वो कथा यदि हमको मिल जाती है तो हमको ये सब अभी जो बतलाया पहले, अपने आत्म अनुभूति की कोई जरूरत नहीं, ब्रह्म जन्म की जरूरत नहीं, ब्रह्मा के जन्म की जरूरत नहीं, वेद के अध्ययन की जरूरत नहीं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं। अतः इस प्रकार असंख्य ब्रह्म जन्म में भी भगवान की कथा का यदि रस नहीं मिला, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो गई, आसक्ति उत्पन्न नहीं है, तो ये जन्म बेकार है। मान लिया कि हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम समस्त साधनों में श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि साध्य है, किंतु कथा में रुचि नहीं है, कुछ दिनों के बाद में वो हरिनाम छोड़ देगा, साधु संग छोड़ देगा, अंत में फिर नीचे चला जाएगा माया। इसलिए हरि कथा प्रारंभ से ही श्रवणम है ना, पहले तो श्रवणम है ना, पहले श्रवणम, इसके बाद में कीर्तन, पहले श्रवण है और अंत तक ये श्रवण रहेगा। जैसा उसका श्रवण होगा नाम भी उसी रूप में उदित होंगे, उसी के ऊपर में सब कुछ श्रवण के ऊपर में निर्भर है। इसलिए यदि हरि कथा में रुचि नहीं हुई, भगवान के रसिक कथाओं में दशम स्कंध इत्यादि में रुचि नहीं हुई, तो जन्म विफल हो गया। अथवा भगवान अनंत की कथाओं में जिनको रस की अनुभूति नहीं होती, उनका वेद अध्ययन, शास्त्रों का पढ़ना, ये सर दर्शन पढ़ना सब बेकार था, एकदम बेकार। जेहेतु वेद अध्ययन व तदुक्त कर्म के आचरण से, समूहों से भगवान की कथा में कोई रुचि उत्पन्न कभी हो ही नहीं सकती। इसीलिए बतलाया आराधितो हरि तपसा तथा नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा। कठोर साधन रूपी कष्ट को स्वीकार करने से, तप करने से, कष्ट स्वीकार करने से भगवान में प्रेम नहीं होगा। इसलिए यदि भगवान की आराधना हो गई तो तपस्या की जरूरत है, और यदि भगवान की आराधना ही नहीं हुई तो तपस्या करके के क्या होगा, बेकार का। और यदि अंतर और बाहर में भगवान है तो तपस्या की कोई जरूरत नहीं, और यदि बाहर और भीतर भगवान है ही नहीं है तो तपस्या करके ही लाभ क्या होगा, उसे तो ऐसा होगा नहीं फल, इसलिए सब समय वो बेकार ही। दूसरी बात, जैसे नाव, यदि किसी नदी को पार करना हुआ तो नाव पर चढ़ करके उस पार हो जाते हैं, फिर
नाव को छोड़,
नाव को छोड़ देते, कहीं ऊंचा ऊंचा चढ़ना है तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सीढ़ी को छोड़ देते हैं ना? कहीं हमको अंधकार रास्ते से गुजरना पड़ता है, दीप को ले लेते हैं, अंधकार को पार करके फिर दीप को रख देते हैं या प्रकाश में आ जाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रकाश में दीप की कोई भी आवश्यकता नहीं। जहाँ नदी को पार कर गए नदी की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से यदि किसी को भगवान के प्रति और भगवान की कथाओं के प्रति रुचि हो गई, प्रीति हो गई, तो और सब जितने अभी तक जो थे साधन उनकी क्या जरूरत रह गई, कोई जरूरत। मूल में वही चीज होगी, भगवान की कथाओं के प्रति रति और वही भगवान के प्रति प्रेम, गोपियों जैसा, तो और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। ये होगा केवल मात्र वैष्णवों के संग में, रसिक वैष्णवों के, तत्त्व वैष्णवों के संग से होगा। इसलिए मुझे ब्राह्मणत्व या ब्रह्म इत्यादि का भाव नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यह भाव जो गोपियों का है स्वाभाविक है और यही रूढ़ भाव है, इसलिए गोपियों के प्रेम की महिमा का वर्णन करना हम लोगों के साथ में नहीं, हम लोग चाहते हैं किंतु इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगले दिन फिर आज अभी हम लोग चलेंगे
कोयला वाली
गली। ब्रह्मा ले लो चतुर्मुख, अथवा ब्रह्मा ने शब्द ब्रह्म लो, या ब्रह्म माने यहाँ पर ब्राह्मण जन्म, वेद इत्यादि जो पढ़ते हैं वो, इन सब में भी यदि अनंत के कथा में रसमन को नहीं है तो बेकार का हो गया। ऐसे जन्म को हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हैं पुत्र का। और वे लोग कथा रसस्य, कथा में जिनको रस है, भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में रस इत्यादि में और बाल्यपन से लेकर तो और जितने भी रस की बातें उसमें बात्सल्य सख्त मधुर रस की बातें हैं, इन कथाओं में जिनको रस है वो ब्रह्मजन्म में क्या जरूरत है। अब उल्टा ले लो, नाराधितो यदि हरि तब सा तथा कि आराधितो यदि हरि तब सा, यदि भगवान की आराधना करते हैं तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार से भगवान की लीला कथा में जिनको रस उत्पन्न हो गया उनके लिए ब्रह्मजन्म की क्या जरूरत है। और जिनको भगवान की लीला कथाओं में रस है वो वेद इत्यादि अध्ययन के लिए षड़ दर्शन अध्ययन के लिए वो समय क्यों बर्बाद करे, कोई भी जरूरत ये दोनों में आया। और सर्वथा गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं, गोविंद श्री गोविंद पदार बिंद मकरंद लंपट लोग हैं मैंने रसिक भक्त वही कथा रसस्य जिसका अर्थ ये चल रहा है। लोगों के लिए ब्रह्म जन्म भाव के उपयोगी नहीं है, भक्ति के लिए चाहिए अनुकूल। देखो भक्ति रागंगा भक्ति में चार चीजें होती हैं, एक होता है भावमय भाव संबंधी, भाव अनुकूल और भाव अविरुद्ध और एक भाव विरुद्ध, ये पांच चीजें होती हैं। जब तक ये सब चीज नहीं समझेंगे तब तक तो गड़बड़ हो जाए। भावमयी किसको कहेंगे, स्थाई भाव संबंधित जो भाव है वो भावमय, जैसे सख्त भाव है मधुर भाव है ये भाव है, उनकी क्रियाएं उनकी सेवाएं वो सब चीज है भावमय। भाव संबंधी मैंने भाव से संबंध रखने वाली जो चीजें हैं वो क्या चीज, उनकी जो क्रियाएं हैं उनकी जो सेवाएं हैं वो सब भाव संबंध है। जैसे भाव संबंध किसको कहेंगे, वही आगे चल करके
भावमय
हो जाए। जैसे गुरु पदाश्रय से लेकर 64 प्रकार की भक्ति के जो अंग हैं उसमें गुरु पदाश्रय और दीक्षा शिक्षा और विसंभयन गुरु सेवा इत्यादि जो 10 जो भक्तिवत्सल स्वामी सिंधु में पहले के जो अंग हैं, मालूम पड़ता है कि ये सब भक्ति क्या है, कृष्ण से क्या संबंध है। गुरु तुमने धारण किया, गुरु के सेवा किया, कृष्ण के लिए क्या हुआ, किंतु नहीं ये भाव संबंधी है, गुरु जी की शिक्षा दीक्षा उनके प्रति श्रद्धा करने से ये भाव संबंधी होकर के पीछे यही भाव है, ये हो गया भाव संबंधी से भाव। और भाव अनुकूल द्वारका धाम भाव के विपरीत है, द्वारका का ध्यान रुक्मिणी का ध्यान ये सब और ऐसे ही सब कुछ है, ये सब प्रतिकूल हैं। इनको यदि हम आचरण करेंगे तो उनका भाव संबंधी और भावमय सब चौपट हो जाएगा, यानी भाव के अनुकूल जो है, जैसे तुलसी जी की सेवा अनुकूल है, भक्तों का चरित्र गान, गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन की परिक्रमा, और यदि द्वारका की परिक्रमा हो तो भाव का प्रतिकूल हो जाएगा इनके लिए, और जो द्वारका का भाव चाहते हैं उनके लिए वो अनुकूल होगा। यदि कोई राधा कृष्ण का ये मधुर रस चाहता है और नाम रख लिया अपना वैदेही शरण, वैदेही शरण मैंने क्या,
सीता जी की
वैद्य ही है सीता है, अब उनके शरणागत हुई नहीं वो तो वैद्य ही शरण माने क्या हो गया सीता जी। अब ये नाम यदि कोई मधुर रस का कृष्ण का भक्त होगा तो उसको सब समय खलेगा। देखते रुक्मिणी, रुक्मिणी प्रिय नाम रख दिया या रुक्मिणी दासी रख दिया तो फिर क्या होगा उसको नाम ये खलेगा का जी हमारा नाम बदल दीजिए गुरु जी। और कोई आराधा प्रिया, आराधा दासी, विशाखा दासी, ब्रज प्रिया, ऐसे नाम। इसी तरह से जितनी अनुकूल चीजें हैं वही उसको ठीक चाहिए, नहीं तो प्रतिकूल हो जाने पर गड़बड़ हो जाएगा। तिलक धारण, गले में कंठी, ये प्रतिकूल भी नहीं है, भाव संबंधी भी नहीं है, किंतु कुछ दिनों के बाद में ये भाव संबंधी और अंत में वो भाव नहीं बन जाएगा।
एकादशी व्रत, दामोदर,
एकादशी व्रत, दामोदर व्रत, ये सब
भाव पुष्टि के सहारे।
अच्छा, और भाव के विरुद्ध जो है वही जो बताए उनको दूर रखना पड़ेगा। यदि कोई गोपी भाव चाहता है और दंड कसरत वैश्य खुद करता है ऐसा करता है तो उसको हो जाएगा ना, नहीं होगा। यदि खूब अत्यंत वैरागी बाबा हो, तीव्र वैराग हो, तो फिर क्या होगा तो उसमें भक्ति जलने की संभावना है। यदि तीव्र वैरागी हुआ सब कलाओं में निपुण होना चाहिए, 64 कलाओं में यदि वो रसोई नहीं अच्छी तरह से बना सकता, यदि सुंदर रूप में हाथ नहीं गा सकता, 8 दिन साल में राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, राधा कृष्ण जी कोमल है ना चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति भी ऐसी कोमल चाहिए, आर्ट भी उनका चाहिए, रसोई बनाने का, स्नान कराने का, सब भाव उनका चाहिए, ये गुरु को पहले प्रयोग करेगा और तब फिर। जो इन सब सेवाओं से दूर रहता है, वैष्णव का संग नहीं, कोई इससे मतलब नहीं, तो फिर उसको कैसे होगा, इसलिए वो मुक्ति का उपासक। ऐसे लोग मुक्ति के तरफ में जाते, उनको साईज मुक्ति भी हो सकती है और यदि किसी कृष्ण की उनकी कृपा हो जाए तो ना है तो सामिप्य भी हो सकता है, सारूप्य भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसलिए यदि जिस चीज का वो उपासक है वात्सल्य का, तो जसोदा जैसे भाव लाना पड़ेगा उनकी किंकरी के रूप में, दास का है तो हनुमान जैसा है, सखा का है तो सीताम मधुमंगल सुबल इत्यादि की भावना, इस तरह से ये होता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण पदारविंद मकरंद लंपट कौन है, सबसे अधिक गोपियां हैं, इससे बढ़कर के ओ चरम सीमा तक और लोग हैं, किंतु यही सबसे अधिक चरम है। जब तक गोपी भाव नहीं आएगा, यही उद्धव जी इस श्लोक में बतलाए, एतः परम तनुहितम गोपवत्। संसार में इन समस्त विश्व में, यहाँ तक कि गोप गोलोक ब्रज में भी तक और यहाँ तक, गोपियों का जन्म धारण करना ही भूई मने यहाँ पर सार्थक है और सब क्या क्या है विफल है। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि अहो इन गोपियां, ये गोपियां कहाँ और मैं कहाँ, मैं प्रभुजन्म नहीं चाहता क्योंकि चरण की धूलि गोपियों के द्वारा हम अभिषिक्त नहीं हो सकते, मैं वेद अभ्यास नहीं करना चाहता। अरे गोपियों के कंठ और हृदय में ही वेद का सार मूर्त रस यहां पर वहां, यहां और यहां पर उनका है, इस वेद में क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अभी वो कर्मकांडी जैसे स्वाहा स्वाहा कर, यही होगा, या उपनिषद में चले जाएंगे तो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि होगा। इसलिए कि ब्रह्म जन्म भी हमको ब्रह्म जन्म की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, शब्द ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोविंद कथा रसस्य अर्थात गोविंद क्या वो पद हाँ पदारविंद मकरंद लंकट गोपी जन्म हमारा कहीं हो जाए या उन्हीं की कथाओं में हमारा यदि रस हो जाए हमारा सब कुछ हो जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ कोई जन्म इत्यादि नहीं चाहते। अब इतना समझने पर कि इस जगत में सबसे बढ़ करके जन्म सफल यदि किसी का है और आंखें किसी की यदि सफल है तो किसकी है, गोपियों की। और वही गोविंद पदारविंद मकरंद के सबसे अधिक योग्य अधिकारी है गोपियों, इनकी कथा में यदि रुचि हो जाए तो हमको आशा है कि हमारी मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। इसके बाद ही ये श्लोक है, प्रेमा स्त्रियो बलचरीर बर विचार दुष्टा कृष्णे च्वपैश परमात्म निरूढ भाव ननिश्वरं भजतु अभिदिशोऽपि साक्षात् श्रेयस्तमः।